जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन जय व्रज जनरंजन, जय जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरंजन, जय जय यमुना तीरावनचारी, जय यमुना तीरावनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Radha, Vrindavan Chanda, Radha, Vrindavan Chanda, Radhe. Hare జయ జగన్నాథ జయ బలదేవ జయ సుభద్రా జయ సుదాస జయ జయ గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ జయ జయ ప్రభుపా 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 ప్రభుపాయ నేతాయ గౌర హరివో పాద పరమంచి పరివాహకుల శ్రీ చరణారవింద భక్తి విదాంత స్వామి శివప్రభుపాద మహారాజ్ కి అనంత కోటి వైష్ణవులకి గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవత పురాణానికి దాయ గౌర్ ప్రేమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం పాంచమా స్కంద్ అధ్యాయ ఏక్ శ్లోక సంఖ్య దో. మహారాజ్ ప్రియవ్రత కా చరిత్ర. నాను నం ముక్త సంగానాం తదర్శనాం దిజర్సభః గృహేషు అవినివేశుయం పుంసాం భవితుం అర్హతి. నాను నాం ముక్త సంగానాం తదర్శనాం నిదర్శభః గృహేషు అవినివేశు ఆయం పుంసాం భవితుం అర్హతి. నాను నాం ముక్త సంగానాం తదర్శనం నిదర్శభః గృహేషు అవినివేశు అయం పుంసాం భవితుం అర్హతి. నాను నాం ముక్త సంగానాం తదర్శనం దిదర్శభవః గృహేషు అవినివేశయం పుంసాం భవితుం అర్హతి. నాను నం ముక్త సంగానాం గృహేషు అవినివేశయం పుంసాం భవితుం అర్హతి. नानुनां मुक्तसंगानां तदर्शनां दिदर्शवः गृहेषु अविनिवेश पुंसान भवितुम अर्हति शब्दार्थ ना नहीं नूनम निश्चय ही मुक्त संगानम विरक्त तदर्शानम ऐसे जिदर्शवः ए ब्राह्मण में श्रेष्ठ विप्रवर गृहेषु गृहस्थ जीवन में अभिनिवेश अत्यधिक अनुरक्ति अयम यह पुंसाम मनुष्य का भवितुम होना अर्हति संभव है। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद भक्त जन निश्चय ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः विप्रवर वे संभवतः गृह कार्य में तचित नहीं रह सकते हैं। तात्पर्य भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति का तथा भगवान को जान सकता है। भगवान को जानने का एकमात्र उपाय भक्ति है। श्रीमद् भागवतम की 11 अध्याय की 14 अध्याय 14 स्कंध 14 अध्याय में उसकी पुष्टि स्वयं भगवान करते हैं। भक्तायाम एकयाग्राह भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। इसी प्रकार भगवद गीता 18 अध्याय की 55 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा मुझे समझा जा सकता है। अतः गृहस्थ जीवन में लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त तथा उसके साथ ही मुक्त होती है। भक्त तथा उसके साथ ही मुक्त होते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में रहता है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। इसकी प्राप्ति केवल भक्ति में संभव है। पारिवारिक कार्यों में अनुरक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। अतः महाराज परीक्षित को ये सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ कि महाराज प्रियव्रत भक्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी अनुरक्त थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजय शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं तदान्तितं पदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं चाग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साश्रितं सावधूतं परिजनाशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगनाता श्रीविशाखाश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादि पश्चात्देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हे कृष्ण हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Mukham Karati Vachalam Pangum Lange Trigirim, Yat Krupa Tamaham Vande Shri Guru Dinatarinam, Paramananda Madhavam Sri Krishna Chaitanya Visharam. Hare Krishna. तो इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में जो जो जहाँ जहाँ इसका ध्वनि या दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे या देख रहे उन सभी से मैं आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए और खास करके हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु के आशीर्वाद की भिक्षा करते हुए जो पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतम पहला अध्याय महाराज प्रियव्रत का चरित्र के दूसरे श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करने के प्रयास करेंगे, जिससे मेरा हृदय की शुद्धिकरण करने के लिए और सबके लिए आनंद के लिए। तो कल हमने जैसे सर्वलक्ष्मी प्रभु से इसका पहला श्लोक का चर्चा हुई थी, जिसमें परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रियव्रत भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहस्मत जन्मूलम कर्मबंध पराभव। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य का पराजित करने वाला है। तो यहां से लेके श्लोक संख्या 1 से लेके 4 तक ये परीक्षित महाराज का राजा प्रियव्रत महाराज के बारे में जो अलग अलग प्रश्न है, इसलिए प्रभुपाद जी ने पहला श्लोक में उसका स्पष्टीकरण किए, क्योंकि प्रियव्रत महाराज इस महान भक्त थे और नारद मुनि के तत्वावधान में थे, नारद मुनि के शिष्य थे और बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार किया, तो उनके मन में ये प्रश्न उठा। और तो इसलिए हम यहाँ श्रीमद् भागवत में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, क्योंकि प्रियव्रत महाराज के बारे में चर्चा है। तो इससे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे बाकी भौतिकवादी लोग का पतन हो जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पे प्रियव्रत महाराज का ऐसे कोई पतन होने का संभावना नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात है, यहाँ महाराज परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट थे, पांडव के दाया थे, तो एक ब्रह्म श्राप के द्वारा, श्रृंगी के श्राप द्वारा उन्होंने ये निर्णय लिया, मैं सबको छोड़ के गृह खतरा अब ये गंगा के किनारे में बैठे हैं और सुखदेव गोस्वामी जिनको ब्रह्मराट कहा गया, क्योंकि उनका भी जन्म इस प्रकार हुआ था सुखदेव गोस्वामी का, जिस प्रकार परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए परीक्षित महाराज को ब्रह्मराट कहा गया, विष्णुराट कहा गया और सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्मराट कहा गया। तो परीक्षित महाराज के मन में ये प्रश्न हुआ कि मैंने तो अभी सब कुछ छोड़ के यहाँ भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अभी गंगा के किनारे में बैठा हूँ और सुखदेव महाराज से सुन रहा हूँ, जो परम विरक्ति है
विरक्त है। और यहाँ लेकिन नारद मुनि के सानिध्य प्राप्त होने के बावजूद वो इतने उच्च कोटि के भक्त जो है, जो स्वयं मनु के प्रथम पुत्र थे, स्वयं मनु और उनके स्वयं मनु के दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्थानपाद। तो अभी प्रियव्रत महाराज क्यों फिर गृहस्थ आश्रम में गए, तो ये उनके मन में ये दुविधा हुआ कि मैंने सब कुछ छोड़ के, राज्य सब कुछ छोड़ के भी गंगा के किनारे में बैठा हूँ, एक लंगोटी पहन के मैं भगवान के बारे में सुनना चाहती हूँ, उनकी परम सिद्धि को प्राप्त करना है। और यहाँ पे प्रियव्रत महाराज जो परम सिद्धि को, लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने फिर गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किए। तो शुरुआत के दिन में भी हमारे मन में भी, हमने जब ये कृष्ण भावना में जड़ित हुए और अलग अलग भक्त का संस्पर्श में आए, तो उनको देख के हमारे मन में भी इतना प्रेरणा रहा कि हम भी इस भव बंधन को तोड़ के यहाँ एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन क्यों ना प्रयास किया जाए। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हम जिन जिन भक्तों को अपने आदर्श मानते थे और वो लोग आज गृहस्थ आश्रम छोड़ के, ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के वो भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। तो इसलिए परीक्षित महाराज का जो ये प्रश्न, इसको ये नहीं है, तो प्रश्न सही है। लेकिन हम इनके जीवन में देखते हैं परीक्षित महाराज, सॉरी प्रियव्रत महाराज, जो एक विरक्त सन्यासी के रूप में थे, हम देखते हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में या बाकी जितने भी संस्था है, कोई अगर सन्यासी आश्रम को अपनाता है या वैराग्य का जीवन बिताता है तो उनको हर व्यक्ति प्रणाम करता है और महाराज करके पुकारता है। तो वही प्रियव्रत महाराज जब अभी गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, राजा बनेंगे, तो वही राजा के नाम पे ही जाना जाएंगे प्रियव्रत महाराज। तो उनके पदवी में कोई फर्क नहीं हुआ, पहले भी उनको महाराज बोला जाता था, अभी भी उनको महाराज ही बुलाते थे। तो इससे सीखने की बात है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होते थे, उनके दिनचर्या उनका जीवनचर्या में कमी थी। केवल यह हो सकता है कि उनका केवल वेशभूषा थोड़ा फर्क हुआ, जंगल में रहते थे, आश्रम में रहते थे, अभी आके राजवट में रहेंगे, महलों में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, तो उतना ही फर्क है। लेकिन उनका जो चेतना में कोई दूषित नहीं हुआ, चेतना में होती थी, क्योंकि उनका जो लक्ष्य वो कृष्ण की चरण कमल की प्राप्ति के लिए था। तो इसलिए प्रभुपाद जी पहला श्लोक में जो शब्द आता है, भागवत आत्मा राम है ना, जो भागवत आत्मा रामा जो व्यक्ति है, फिर तीन प्रकार का भागवत जो बताया थी कि मुक्त आत्मा है, तो भागवत आत्मा राम जो है वो व्यक्ति क्यों पराभव, पराभव मतलब जो संसार के चक्र में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है ना, लोग घर गृहस्थ में रहता है, पत्नी बच्चे, तो उसके जो लक्ष्य है, क्योंकि घर में रहना मतलब एक्चुअली बंधन का कारण बन जाता है, तो कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज मन में जो प्रश्न हुआ था, क्योंकि नारद मुनि ने उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण किए थे प्रियव्रत महाराज को, और केवल उतना नहीं कि प्रियव्रत महाराज भी अपने जो ब्रह्मचारी आश्रम में थे तो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी में थी। तो प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं वहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति अगर घर गृहस्थ में रहता है तो साधारण तो क्या होता है कि वो आसक्ति हो जाता है, अर्थ गृह क्षेत्र सुत्ता, जिसके कारण उसका स्वरूप विस्मृति होता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। तो मैं सुन रहा था कि परम पूज्य राधना स्वयं महाराज बता रहे थे कि मुझे कोई ऐसा आश्चर्य नहीं होगा कि मान लो कि जो भी आश्रम के ब्रह्मचारी है, निवासी है, आगे जाके अगर गृहस्थ आश्रम का स्वीकार करते हैं, इसलिए मतलब गृहस्थ ब्रह्मचारी आश्रम से वो आगे का आश्रम से प्रवेश करते हैं जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए, तो मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि उसका ग्रेजुएशन होता है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम की प्रवेश करते हैं। हाल ही में कमल लोचन बबी कोई प्रश्न पूछा गया तो प्रभु जी का उत्तर यह था कि इसको तो हम बोल देते कि पतन है, लेकिन क्योंकि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में तो अगर कोई भगवा कपड़ा पहनता है, हरे कृष्णा, तो उसको एक सन्यासी के दर्जा पर मान दिया जाता है, तो फिर उसका सफ़ेद वस्त्र पहनता है तो फिर मान जाते कि उसका पतन हो गया, लेकिन उसका पतन नहीं है। और ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम को प्रवेश करता है, क्योंकि केवल ब्रह्मचारी ही अपना कपड़ा बदल सकता है और कोई बदल नहीं सकता है ना। तो वो अच्छी तरह से समझा रहे थे। तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न हुआ, लेकिन वो प्रियव्रत महाराज एक साधक नहीं थे एक्चुअली के, वो तो उच्च कोटि का भक्त थे, बिल्कुल सेल्फ रियलाइज थे। तो लेकिन उन्होंने क्यों फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया? और उतना नहीं है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बावजूद में उनको संतुष्टि, मतलब गृहस्थ आश्रम में संतुष्टि प्राप्त हुआ, वो फुल्ली सेटिस्फाइड थे। फिर प्रभुपाद जी बताते कि तीन प्रकार का जो आत्माराम है, पहला कुटी का जो आत्माराम है, जैसे लोग अपने भौतिक जीवन में थोड़ा सा कोई पुण्य का द्वारा अपने आप को सुखी मानते हैं कि मुझे मेरा पास सब कुछ है, जो चाहिए भगवान के द्वारा सो मिलता है, मुझे कोई कमी नहीं है, एक प्रकार का सुख का अनुभव करता है, जिसको कर्मी बताते हैं। और दूसरा प्रकार का जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म लीन होना चाहता है, ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करता है, वो भी दूसरा प्रकार का एक आत्माराम है। लेकिन जो तीसरा वर्ग का आत्माराम रहता है, क्या कि भगवत आत्माराम, वो केवल भगवान के भक्तों को माना गया जो 24 घंटा निरंतर भगवान के सेवा में, भगवान के नाम में रुचि लेता है। और प्रभुपाद जी सातवां अध्याय गीता के 3वां नंबर श्लोक की वहाँ बताते कि मनुष्यानाम सरासत्तु कश्चित यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो जो अकाम है, जिसको किसी प्रकार का कामना नहीं है, वो पूरी तरह से संतुष्ट है। तो प्रियव्रत महाराज इस स्तर में थे, भगवत आत्मा राम। तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किए, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी वो पराभव हुआ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम की इतने जो सांसारिक पारिवारिक कार्य है उसमें भगवान जो मन है पूरी तरफ से भगवान को केंद्रीभूत करना वो कठिन है। फिर प्रभुपाद में प्रह्लाद महाराज के शिक्षा के बताते हैं कि प्रह्लाद महाराज अपने पिता के पूछे हुए प्रश्न कि आपने स्कूलों में, विद्यालय में, पाठशाला में अपने सबसे अच्छा क्या सीखा, फिर प्रह्लाद ने ना डरते हुए अपने पिता से निर्भय होकर प्रह्लाद महाराज ने बताते कि तत्साधु मन्य असुर वर्य दहीनाम सदा समुद्विघ्न धियाम असत गृहात हितात्मा पद्मम गृहम अंध कुपम वनम गतो यद हरिम। तत्साधु मन्य असुर वर्य दहीनाम, अपने पिताजी को बोलते कि ए असुर श्रेष्ठ, जो कोई व्यक्ति संसार में जन्म लिया है, उसको देह प्राप्त हुआ है, भौतिक देह प्राप्त हुआ है, वो देह में फंसा हुआ है, और उतना नहीं है, सदा समुद्विघ्नय दिहाम असत गृहात, क्योंकि घर ऐसे मिलते हैं और हमेशा क्या उद्विग्न रहता है हमेशा के लिए, इसलिए सदा समुद्विघ्नय। तो हम भी देखते हैं कि कोई गृहस्थ आश्रम है, परिवार में है, उसका मन में हमेशा ये असंतुष्ट रहता है कि जीवन में कुछ कमियां है, जीवन में कुछ पूरा करना है, है ना। क्योंकि जो भी उसको मिलता है उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं होता है, हमेशा उसका मन में ही विचार आता है कि कुछ तो कमी है मेरे जीवन में, कुछ कमी है। क्योंकि सदा समुद्भिघ्नः धियाम अशत्कृहात्, तो प्रहलाद महाराज ये उपदेश देते हैं क्योंकि ये ग्रह जो है, ग्रह ये हितात्मा पतम गृहम अंधकूपम, ये ग्रह जो है, घर जो है, क्या है, गृह अंधकूपम जैसे है। हाँ, तो इसलिए प्रहलाद महाराज ये उपदेश देते हैं कि वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, तो इसलिए आपको वन में जाना चाहिए और वन में जाके क्या करना चाहिए, तपस्या, हरि का आश्रय लेना चाहिए। लोग तो जाते हैं वृंदावन में, जाते हैं मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भगवान हरि का आश्रय नहीं लेते हैं, तो भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो वही प्रहलाद महाराज भी अपने प्रार्थना में, सुंदर प्रार्थना में नरसिंह भगवान को अर्पण करते थे कि वो भी एक असुर कुल में जन्म हुए और वो भी अहिकूपे, मतलब जैसे कोई कुआं है उसमें सर्प से भरा हुआ है, अंधकूप मतलब ऐसा जो कुआं है जिसमें कोई पानी नहीं रहता है और बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है कि कुआं है क्या है, बिल्कुल सामने हरा भरा जैसे घास वगैरह दिखाई पड़ता है और उसके अंदर कोई गिर जाता है तो क्या है, कितना भी चिल्लाता है पुकारता है उसको उद्धार कोई नहीं कर सकता है, इस प्रकार अहिकूपे ना। तो प्रभुपाद देते उदाहरण देते कि क्योंकि हमने अहिकूपे देखा नहीं होगा, क्योंकि जंगल में दिखाई पड़ता है या ऐसे कोई कुआं है बहुत सालों से उसका इस्तेमाल नहीं होता है और जो घास वगैरह में भर जाता है, उसके अंदर कोई गिर जाता है तो कितना भी चिल्लाता है पुकारता है, एक तो हाथ पैर तोड़ता है, उसमें क्या क्या हिंसक जंतु भी रहेंगे उसको भी पता नहीं है। तो लेकिन हमने हमारे जीवन में ऐसे दो अनुभव मैंने बताना चाहता हूँ, जहाँ मैं पढ़ाई करते थे वहाँ पे एक बार स्कूल में एक छठी कक्षा की एक बालिका थी और ये जो ग्रीष्म अवस्था का अंतिम दिन था और उसी दिन वो बाथरूम में लास्ट मतलब 3:30-4 बजे की होगी, वो बाथरूम के अंदर जाके ये बंद की और उसी समय स्कूल का छुट्टी हो गया, बाद में 2.5 महीना तक वो स्कूल बंद रहा, तो बालिका उसके अंदर रही और 2.5 महीने के बाद जो पता चला कि केवल उसका केवल वो कंकाल अस्थि केवल दिखते, तो उसके अंदर वो कितना चिल्लाया होगा, कितना पुकारेगी, लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दिया क्योंकि बंद था। और हाल ही में भी हम जब हमारे युवक का जो केंद्र है, वॉयस सेंटर है बुरला में, जो उस मकान में रहते, इस मकान के पीछे भी ऐसे एक कोठरी है जो बिल्कुल कई साल से, मतलब जब से बनाया उसमें कोई रहा नहीं है, तो बिल्कुल हमारे कैंपस के लगे हुए है। तो भारत में तो लोग मतलब चोरी करने में उस्ताद है, कुछ भी मिलता है तो चोरी कर लेते हैं। तो जो स्वरेज लाइन था, उस लाइन पे जो कवर, मैन होल बोलते ना, मैन होल कवर था, उसको किसी ने चोरी करके ले लिया, तो उसके अंदर एक छोटा सा है ना, वो कितना होगा आपको, 0.5 मीटर का होगा उसका डायमीटर परिधि, उसके अंदर एक बछड़ा गिर गया था। वो कब से वो चिल्ला रहा था और किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि उसमें जो मकान में तो कोई रहते नहीं थे और हमारा मकान बिल्कुल इस बाजू में है और बिल्कुल जंगल वगैरह था, तो पेड़ पौधा वगैरह था, तो हम उस तरफ जाते नहीं थे। तो लेकिन धीरे 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 तो उसका स्मेल आने लगा 1-2 महीने के बाद, फिर हमको पता चला और फिर मैंने जाके देखा तो वो मेरे को गाय का अस्थि दिखाई पड़ा उसमें, तो थी और मेरे को बीच बीच में थोड़ा सा आवाज़ भी सुनाई दे रहा था, तो मेरे को पक्का हुआ कि ये है ना। तो प्रकार ये गृहा अंधक उप है जो जिसके अंदर गिर जाता है संसार, तो उससे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये परीक्षित महाराज का ये प्रश्न ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम देखते हैं, हमने कई बार सुना भी है, कोई अगर एक अच्छे कॉलेज से IIT से अच्छी डिग्री लेता है वो, तो उसको तो कहीं में भी जा सकता है, अच्छी कमाई कर सकता है, लेकिन वो किसने तो शायद बड़ा पाव, एक IIT ग्रेजुएट्स ने बड़ा पाव का दुकान खोला था ना, हाँ बड़ा पाव का दुकान, एक चाय का, हाँ BA। तो आश्चर्य की बात है कि इतना अच्छे पढ़ाई किए, इतना डिग्री लिए, इतना पैसा खर्च किए, लेकिन इसमें ये तो सब प्रियव्रत महाराज, उनकी इतना अच्छा पदवी प्राप्त हुआ था तो, लेकिन उन्होंने फिर गृहस्थ का आश्रम में जंजाल में क्यों फंस गए, है ना। जिस प्रकार कि हम देखते हैं कि हम अगर उनको कोई अच्छे से भोजन कभी प्राप्त होता है, अच्छे से बढ़िया सा खान पान, और दूसरा दिन हमका हमारे सामने कोई अगर सूखा रोटी वगैरह देता है तो हम उसको स्पर्श भी नहीं करेंगे, अगर ऐसे परिस्थिति नहीं अगर तो हम नहीं। जो इस प्रकार इतना सुविधा मिलता था तो फिर इस प्रकार से उसने क्या है? तो इसलिए परीक्षित महाराज इसमें ये दूसरा श्लोक में ये प्रश्न थी कि ये मुक्त संग, प्रियव्रत महाराज तो मुक्त संगत है ना, लेकिन उन्होंने इस गृहस्थ आश्रम को क्यों स्वीकार किए, और गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करके भी वो गृहस्थ आश्रम में भी आशक्ति मतलब उनको कोई प्रभावित नहीं थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि, क्योंकि हम देखते हैं भक्त साथ साथ भक्ति और इंद्रिय तृप्ति वो कभी कभी साथ साथ नहीं चल सकता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते, कोई व्यक्ति अगर दो नाव में अपने पैर रखा है ना, दो नाव में पैर रखा है तो क्या होगा, ना इधर का ना उधर का, ना धोबी का घाट का ना घर का, ना इस प्रकार का स्थिति है। तो एक को प्राप्त करना है, अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो हमको इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना पड़ेगा, अगर इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करना है तो भक्ति को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो भक्ति विद्यापूर्ण महाराज को पूछा था कि जो हमारे गुरुकुल के अध्यापक है मायापुर में, एक ब्रह्मचारी का लक्षण कैसे, ब्रह्मचारी का जिन मतलब जिसका बोलते हैं सिम्टम्स या लक्षण कहते हैं, तो सरल भाषा से महाराज ने समझाया कि ब्रह्मचारी मतलब कि जिसको कोई स्त्री की क्या बोलते हैं उसको, नीड है वोमेन, कि स्त्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आप छोटा सा जगह है तो वहाँ प्रसाद खा लिया, छोटा सा एक लॉकर है उसमें अपने सामान रख लिया, हाँ उसका जीवन बिल्कुल सादा एकदम सीधा है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है, एकदम सादा जीवन है, उच्च विचार रखते तो वही बोलते हैं। और इसलिए अगर ब्रह्मचारी आश्रम है वो बिल्कुल उसका जीवन सादा होना चाहिए, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, है ना। और तो इसलिए उसमें दोनों में अंतर ये है कि नीड मतलब ये जरूरतमंद है, और वांट मतलब मुझे चाहिए, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहिए मतलब तो बहुत कुछ चाहिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए फंते थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे पूज्य हलधर सर महाराज बता रहे थे, आजकल हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में लोग इतना साल बिताने के बाद भी गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं, तो महाराज बोले कि लोग ब्रह्मचारी जो है वो भीष्म देव का पथ को अनुगमन करना चाहते हैं, भीष्म देव थे ब्रह्मचारी थे, नष्ट का ब्रह्मचारी भीष्म देव ना, दृढ़व्रता, लेकिन वो क्या करते राज करने में मदद करते थे, है ना। तो इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं लेकिन आपने घर में घर का कुछ समाधान है, परिवार का कुछ समाधान है, तो उनका मन उसमें लग जाता है, तो इसलिए फिर वो आश्रम जो है ब्रह्मचारी आश्रम उनका मन उठ जाता है। तो इसलिए हमको बहुत ही सावधानी रहना चाहिए। तो इसलिए बताया जाता है कि तो ब्रह्मचारी आश्रम है लेकिन प्रियव्रत महाराज तो संन्यास आश्रम में थे, तो इसलिए बताया जाता है कि संन्यास आश्रम कोई अगर स्वीकार करता है तो उसके लिए पूरा परिवार क्या है, मरे हुए जैसे, डेड। संन्यास आश्रम का ये पूरे परिवार उसके लिए कोई ये नहीं, वो सबको समान होते हैं। तो ये मुक्त संग मतलब मुक्त संगत है, भक्ति रसामृत सिंध में रूप गोस्वामी पाल लिखते हैं, या हर्ष्य हरेर दास्य कर्मणा मनुष्य गिरा निखिल जीवन मुक्त स मुच्यते। जीवन मुक्त हो सकता है, इसका नहीं मतलब नहीं है कि ये हमको शरीर छोड़ के फिर बहुत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के बाद कोई मुक्त हो सकता है? नहीं, हम देखते हैं कई सारे जो भक्त है वो इस शरीर में, भौतिक शरीर में रह के भी वो मुक्त हुए। कर्मणा मनसा, क्योंकि उनका कर्म, उसका मन और गीरा, उसका वाणी, काया मन वाचा, तीनों अचल क्या है, भगवान के सेवा में लग जाते हैं, तो भी मुक्त हो सकता है। जिसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, जैसे एक नारियल, हम देखते हैं कि नारियल, तो नारियल जब बिल्कुल सूख जाता है वो आवाज़ करता है। तो इस प्रकार व्यक्ति यहाँ पर रहस्य के भी मुक्त हो सकता है। तो इसलिए प्रियव्रत महाराज वो मुक्तात्मा थे, इसलिए गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यक्ति हम देखेंगे चैतन्य चरितावत में, जो चैतन्य नित्यानंद प्रभु, जो महाप्रभु से 12 साल बड़े थे, उनको अवधूत माना जाता था। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास आश्रम स्वीकार करके वो आए, क्योंकि संन्यास महाप्रभु दिखाना चाहते कि वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, लेकिन नित्यानंद प्रभु की जरूरत नहीं था क्योंकि वो संन्यास आश्रम से भी ऊपर है, वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु आए जगन्नाथपुरी में, और रथयात्रा का 2-3 साल के बाद, रथयात्रा के बाद महाप्रभु उनको बुलाए, जब अलग अलग भक्तों को उन्हें विदा दे रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु को बुलाए और बोले कि आप अभी नवदीप जाओ। तो ये मध्यम चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला के 15वां अध्याय में बताया जाता है कि नित्यानंदे आज्ञा दिल यय गौड़ देशे, अनुग्रह प्रेम भक्ति अनर्गल प्रेम भक्ति करिह प्रकाश है। नित्यानंद प्रभु को बुलाए और आज्ञा दिए कि आप गौड़ देश जाओ, मतलब बंगाल में जाओ, और अनर्गल मतलब खूब प्रचार करो प्रेम भक्ति। किसका प्रचार करो? प्रेम भक्ति प्रचार करो। प्रेम भक्ति करिए प्रकाश। नित्यानंद प्रभु जब 38-40 साल हो गया होगा, उनको बोले कि आप भी गृहस्थ आश्रम में जाओ और जाके प्रचार करो। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ताप्तेर में लिखते हैं कि जो प्रकृत सहजिया है, तो वो लोग एक्चुअली नित्यानंद प्रभु को नहीं समझ पाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु पतन हो गया, इसलिए उनको महाप्रभु ने उनको बोला कि आप जाओ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और संतान के उत्पन्न करो। प्रभुपाद लिखते हैं इसको पाषंड बुद्धि, जो कुनपात्व, कुनपत्री धातु के, भौतिक शरीर त्रिधातु से, कफ वात पित्त नहीं, तो ये लोग जो है उनको ये समझते हैं। उतना नहीं, चैतन्य महाप्रभु उनको साथ में और कई सारे पार्षद भी दिए, जिनका नाम है एक रामदास और गदाधर दास, ये गदाधर पंडित नहीं है, गदाधर दास, उन लोग को साथ में मेरे के नित्यानंद को भेजे, अब जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, वहाँ प्रचार करो। तो कोई अगर गुरु के आदेश से अगर गृहस्थ आश्रम में जाता है तो उनके लिए वो मुक्त संघ रहता है, मुक्तात्मा ही रहता है। जो 12 महाजन का नाम बताया जाता है तटास्कंध में, उसमें से हम देखते हैं कि उसमें से 7 जो है गृहस्थ आश्रम में है और 5, लेकिन 4 कुमार एक साथ है ना, तो इसलिए उनको मिला के 8 हो जाते हैं, तो बिल्कुल बराबर है ना, 7 गृहस्थ आश्रम में और 8 जो है ब्रह्मचारी आश्रम में है, नारद, कुमार, कपिल, भीष्म, सुखदेव, है ना, ये 8 जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और 7 गृहस्थ, ब्रह्मा, शिवा, मनु, प्रहलाद, यमराज, जनक और बलि। और उसमें हम देखते हैं कि जो 4 संप्रदाय से है, ब्रह्मा जी के द्वारा संप्रदाय है और भगवान शंकर शिव जी के द्वारा संप्रदाय है, इसमें से लिखती है कुमार संप्रदाय है ना, तो उनका पाला हमेशा भारी है अपने प्रति। और चैतन्य महाप्रभु जैसे जगन्नाथपुरी में भी थे, तो जो 3 भाई है, गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष, वासुदेव घोष तो इतने संगीत गाते थे, तो गोविंद घोष को महाप्रभु एक बार आदेश दिए, महाप्रभु दोपहर का समय था, प्रसाद सेवन है, तो महाप्रभु माने कि मुझे हरी टाकी चाहिए, हरी टाकी लहाड़ा, जो इसके लिए पाचन में मदद करता है, तो उन्होंने था ही नहीं, तो उन्होंने जाके बाहर पड़ोसी से मांग के लेके आए। तो उनके मन में विचार हुआ कि कल अगर मांगेंगे तो हमें तुरंत जाना नहीं पड़ेगा, महाप्रभु की सेवा में तुरंत प्रस्तुत करेगा। तो दूसरा दिन जो महाप्रभु मांगे है तो तुरंत उन्होंने निकाल के दिए, तो आपको पता चला कि उन्होंने रखा है पहले से लाके, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, मतलब तो महाप्रभु बोले कि ये आपको शोभा नहीं देता है, आप नवदीप जाओ और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, गोविंद घोष है ना। तो इस प्रकार हम लोचनदास ठाकुर के बारे में सुनते हैं, जो नरहरी सरकार के शिष्य हुआ करते थे, नरहरी सरकार। तो लोचनदास ठाकुर बचपन के दिन में भी लोचनदास नरहरी सर ठाकुर के चरण प्रति इतना आसक्ति था, उनके आश्रम में रहते थे, लेकिन उनके बचपन में ही उनका बाल्य विवाह हो गया था। उनको जाने को कोई ये नहीं था, जो वो जो कन्या थी उसका भी जो उम्र हुआ तो उनके पिताजी ने खबर दिया अभी आप आके लीजिए। तो लोचनदास ठाकुर का पिताजी ने नरहरी सरकार को बोले कि अरे उसको भेजिए, अभी समय हो गया, उसका विवाह हो चुका है, तो उसको गृहस्थ आश्रम में को देखभाल करना है। तो लोचनदास ठाकुर ने अपने नरहरी सरकार से आज्ञा लिए और गए। इच्छा तो नहीं था, तो घूमते घूमते एक्चुअली फिर ससुराल गाँव में गए, कभी तो गए नहीं थे, देखे नहीं थे उनका साथ, उनका दर्द अभी मुलाकात भी नहीं हुआ था, तो पता नहीं था एक्चुअली। तो एक कुआं में देखे कि बालिका ने कन्या ने पानी निकाल ली, तो उनको पूछे एक्चुअली कि उनका घर कहाँ पे, तो बालिका ने बता दिया कि उस कोने में है। तो लोचनदास ठाकुर पूछते वहाँ चले गए, जाके पहुँच देखे जिस कन्या को पूछ रहे थे वही है ना मातृवत परदा ऋषि, तो उनको माँ के रूप से संबोधन किए, तो वही उनके पत्नी रहती थी। तो लोचनदास ठाकुर भी अभी इतना दिन के बाद आए, पहली बार आए भोजन वगैरह पर, तो रात के समय तो लोचनदास ठाकुर क्या बोलती, मैंने तो आपको भी माता के रूप से संबोधन किए, तो मैं कैसे आपको पत्नी स्वीकार करूँगा। तो लेकिन रात भर उनके बात हो रहा था ठीक, तो उनके पत्नी बोले कि आप मुझे लेके जाइए, आपके साथ में रखिए, लेकिन मैं आपके भक्ति में आध्यात्मिक कार्य में कभी भी मैं बाधा नहीं डालूंगा। और बताया था कि लोचनदास ठाकुर लेके आए, और लेकिन उनके मन में या अच्छी आदर्श गृहस्थ आश्रम में रहे और सारा जीवन बिताए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जयदेव गोस्वामी में जयदेव गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आए, तो उनको भी एक ब्राह्मण ने, उनको कोई पुत्र संतान नहीं हो रहा था, तो इस ब्राह्मण ने जगन्नाथ को प्रार्थना किए थे, जो भी संतान होगा मैं आपको सौंप दूंगा, लेकिन पहला संतान। तो उनको क्या हुआ, स्वभाव से एक पुत्री मिला, जो पुत्री बड़ी हो गई तो आके जगन्नाथ जी को बोला कि मैंने आपको वचन दिया था, इसलिए आप स्वीकार कीजिए। जगन्नाथ बोलिए जाइए, जयदेव गोस्वामी है उनको दीजिए। तो वन के सौंपे अर्थनती, बोलिए जगन्नाथ जी का आदेश है। जयदेव गोस्वामी सोचे कि मैं भी रखूँगा और रात को सोने के बाद एक्चुअली मैं भाग जाऊँगा। देखिए उसी रात को जगन्नाथ जी स्वयं में सपने में आए, बोलिए मेरा आदेश है और आपके भक्ति में ये कोई बाधा नहीं डाले कि हाँ कि आपको अच्छी मदद करेगी अपने लिए। तो इस प्रकार उसके एक आदर्श गृहस्थ आश्रम में रह के हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, गुरु के आदेश है। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी के लिए प्रभुपाद जी पहले समय ये कि प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है ना। और भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है कि जो गुरु को प्रसन्न करता हुई एक्चुअली भक्ति है। कोई कार्य अपने गुरु का आदेश, गुरु को जो प्रसन्न होता है वही एक्चुअली भक्ति माना जाता है। कोई भी आश्रम में रह सुनते थे, और हम अभी आश्रम में रहे देखते कि है ना, जैसे लॉकडाउन के पीरियड में पहला एकादशी आया, उसी एकादशी के दिन हमारा कुछ भक्त लोग फलाहार करते हैं, लेकिन उसको उनको यहाँ तक कि भगवान के लिए भी सही ढंग से फल नहीं मिल रहा था। तो उसी दिन ब्रह्मचारी को अच्छे से फल नहीं मिला, लेकिन बाद में दो एकादशी इतना फल आ रहा है, इतना फल आ रहा है, हम खा नहीं पा रहे है ना। तो इतने जो मिल रहा है हमको, जो यहाँ पे फैसिलिटी मिल रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए ये फैसिलिटी और कोई प्रोवाइड कर रहा है, उसका बलिदान से, उसका त्याग से हमको मिल रहा है, वो तपस्या कर रहे हैं और तपस्या का फल हमको मिल रहा है ना। और फिर और हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी बन गया या साधु बन गया, इसलिए जो अहंकार है ना, हम अभी इस जो त्याग को भी त्याग करना चाहिए, वो असली असली साधु है एक्चुअली। अगर हमने त्याग किया इसलिए हम अहंकार है, उसी अहंकार को हमको त्याग करना चाहिए ना। और फिर बताया जाता है कि अभी आश्रम को हम जैसे एक पंथशाला या गेस्ट हाउस जैसे नहीं सोचना चाहिए। अगर हम इसको घर मानेंगे तो फिर घर घर के साथ और घर में जो परिवार है उनके साथ भी हमारा अच्छा आदान प्रदान कर सकता है और फिर हम दूसरे घर को भूल जाएंगे। इस वक्त विनोद ठाकुर बोलते कृष्ण रस संचार करी छाड़ी अनाचार, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गाय गौर प्रेमानंदी।